This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please remember, we do not address company-specific queries. You, of course, can call us on 2331-4444 and 2342-1050. I am Gaurav Dhawanlal and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. हम लेकर आए हैं आपके लिए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी. आज सोमवार है और आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं. हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे. आप हमें 2331-4444 और दूसरे नंबर 2342-1050 पर कॉल कर सकते हैं. दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना न भूलें. और श्रोताओं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल जी. यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद.
और सबसे पहले कार्यक्रम में हेडलाइंस के साथ में है गौरा.
थैंक यू निखिल. डॉक्टर यामिनी, वेलकम टू द प्रोग्राम.
थैंक यू.
अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस. बेंचमार्क इंडिसीज एंड हायर अमिड वॉलेटिलिटी. निफ्टी क्लाइम 0.16% व्हाइल सेंसेक्स गोज अप 131 पॉइंट्स. सेंटर इम्पोजेज वीक स्टॉक लिमिट्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी. And crude oil prices surge amid summer demand expectations.
घरेलू शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव के बीच बढ़त के साथ बंद हुए. निफ्टी में 0.16% का उछाल और सेंसेक्स में 131 अंक की बढ़त. सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के भंडारण सीमा निर्धारित की और गर्मियों में ईंधन की मांग में तेजी के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि. घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी में आज उतार चढ़ाव भरा सत्र देखा गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक आज 131 अंक यानी 0.17% की बढ़त के साथ 77,341 अंक पर जाकर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37 अंक यानी 0.16% ऊपर चढ़कर 23,538 पर पहुंच गया. बीएससी के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 0.37% की बढ़त देखी गई जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.27% का लाभ दर्ज हुआ.
अ डिटेल लुक एट द स्टॉक्स. इंडियन बेंचमार्क इंडिसीज एंडेड हायर इन अ वोलेटाइल सेशन टुडे. एट क्लोज द 30 स्टॉक इंडेक्स सेंसेक्स वाज अप 131 पॉइंट्स और 0.17% एट 77,341 एंड द निफ्टी क्लाइम्ड 37 पॉइंट्स or 0.16% at 23,538. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was up 0.37%, while the small-cap index gained 0.27%. 19 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were Mahindra & Mahindra, 2.69%, Power Grid, 2.23%, and Sun Pharma, 1.93%. Conversely, the three major laggards were IndusInd Bank, 2.37%, Adani Ports, 1.72%, and Tata Steel, 1.08%. In sectoral indices at the BSE, 11 out of 20 sectors were positive. The top three gainers were the auto sector, 1.33%, the power sector, 1.28%, and the industrial sector by 1%. Whereas the metal sector was by 0.91% was down, the services sector by 0.69% and the energy sector by 0.55%, and these were the three major laggards. The overall market breadth was positive. Out of 4,155 companies, shares of 2,107 companies advanced, 1,890 declined, and 158 remained unchanged. Well, today is a listener-based program, and we are delighted to be joined by Pramod from Delhi. Pramod, welcome to the program. Please ask your question.
Good evening, sir.
Good evening. Ask your question.
See, I'm not expert on anything, but I have a simple question to ask.
Ji.
Any fate for UNITEC now?
Well, we don't answer a very specific stock-related question.
Yeah, that's what I'm saying. Any fate for UNITEC share?
Well, that's what we're trying to say, that in this program, we don't answer questions specifically to a particular stock or a company. If you want to know about an industry or an overall stock markets, you can definitely refer to us.
Okay. Then I want a very general question. What is the difference between the revenue, fiscal year and a financial year?
Fiscal year and a financial year. So your fiscal year is the year in which the government makes its budget for a specified period. And it has been usually since the ages has been we've been taking, because agriculture was our mainstay, it has been taken from the day the budgets are presented to, from April to the end of March. That is what is your fiscal year. Also, the financial year tends to be the same. But there has been a lot of debate about the fiscal year and the financial year in terms of shifting it to January to December. But again, keeping in view that we are an agrarian economy and most of our farmers are there, depending upon their sowing as well as the harvest, this particular period of the fiscal year is always maintained through with the agriculturist.
और वैसे मैं आपको एक सलाह ये जरूर देना चाहूंगा, जिस कंपनी के बारे में भी आप ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा ज्यादा पढ़ें, समझें और तभी उसमें निवेश करें, वो आपके लिए फायदेमंद होगा.
एब्सोल्युटली. Dr. Yamini, if you could just share, we spoke about the stock market and we have been seeing today was a volatile session, and we also saw that in the interim there is a huge segment of retail buyers that are doing profit booking during the day. And hence, of course, they're not being able to move the market much. But this is an increasing segment. So what are really the risks for new entrants into this sector where you book profit by the day?
Well, there has always been an intraday trading. Also, there have been short-term traders, medium-term traders, and long-term traders. So if you're doing an intraday buying and selling, you are looking at a speculative position which will give you necessary profits. And if the markets or specific stocks take a jump and one takes a volume, there are profits available. Always for a new entrant, it is good to first understand the market, understand the depth of the market, also see their pockets before they take positions, and then take positions. Also, it is advisable that even if you're looking at profits which may be very gainfully coming to you, one must not go overboard by taking loans or overbought positions that may hamper them financially, personally, or even in an organization basis.
That means in effect what we understand is you're saying that it's a speculative area.
Intraday is often speculative on let's say if there is a likely announcement or there are likely results or there are likely some movements in specific industry, or there is a likely announcement overall in the industry or overall in the world markets or in the specific markets, then one speculates. Also, on the tips that are given by many stockbrokers or what now is a sanctioned research analyst license that would be given out, then people take positions. And in this, they are also based upon their own intuitive self. So one is always necessary to keep a very objective means of investing or speculating so that one knows exactly what exposure one is taking in the market and how much would be gainful.
Right. We are now joined from Jaipur. Jitendra is with us. Jitendra, apna sawal poochhe, please.
हाँ हाँ शनिवार को सर मैडम मैंने पूछा था लेकिन जैसे संतुष्ट नहीं हुआ जवाब से तो फिर पूछ रहा हूँ कि अगर आज की डेट में हमको एसआईपी करना रहे तो कौन से सेक्टर में एसआईपी करें या निफ्टी 50 में किसी शेयर को कर सकते हैं.
जी देखिए, जब आप एसआईपी करते हैं, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास. या तो आप सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर के फिर इन्वेस्ट करते हैं. कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी होते हैं और इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होते हैं, उनमें आप जा सकते हैं. ऐसे इक्विटी डेट होते हैं और बैलेंस्ड फंड्स होते हैं और भी बहुत थीमेटिक सेगमेंट्स होते हैं. एसआईपी का फायदा आपको यही होगा कि आप धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं. और स्पेसिफिक इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड्स एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ज्यादा नहीं आप देखेंगे कि स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड ऑफर करेंगे, पर बैंकिंग और आईटी इंडस्ट्री काफी बुलिश है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं.
इस बीच मुंबई से हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं. सुनील जी, आपका प्रश्न क्या है?
गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल है कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स के, उसके बारे में मतलब आपका क्या व्यू बनता है?
मेरे ख्याल से आप कैपिटल गुड्स की बात कर रहे होंगे.
कैपिटल मार्केट लाइक म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकरेज कंपनीज,
कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की जहां पे आप बात कर रहे हैं, जैसे ईटीएफ्स हैं आपके, म्यूचुअल फंड्स हैं, या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं, या इंडेक्सेस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. वो फंड्स अच्छे होते हैं यूजुअली जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता और जिनको स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना होता है और प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है मार्केट्स को समझने के लिए, वहां पे म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता है क्योंकि काफी हद तक डाइवर्सिफाइड रहता है और प्रोफेशनली मैनेज रहता है. बेंचमार्किंग भी आपको अवेलेबल होती है, कंटिन्यूस रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होती हैं, तो आप पोजीशंस ले सकते हैं. एनएवी बेस्ड होते हैं, उनका भी फायदा होता है कि आप कभी भी एंटर और एग्जिट, जैसे ईटीएफ्स में है कभी भी आप एंटर और एग्जिट कर सकते हैं. ऐसे म्यूचुअल फंड्स में एट द एंड ऑफ द डेज आपको एनएवीज मिल जाती हैं, आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन फंड्स का प्राइमरली इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होता है और प्रोफेशनल जो ओवरऑल ट्रेड है उसका फायदा होता है.
यामिनी जी, अभी अगर मार्केट की हम बात करें तो बीते सप्ताह जो जिस तरह की स्थिति हमने देखी, उस तरह की स्थिति लगता नहीं कि वीक में कुछ जाने की संभावना, क्योंकि आज भी मार्केट का उतार चढ़ाव भरा सत्र रहा. बहुत ही संभलते हुए निवेशकों ने भी पैसा लगाया है, तो घरेलू निवेशकों और खासतौर पर जो छोटे निवेशक हैं उनको किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए?
जी देखिए, सबसे पहला तो ध्यान कोई भी छोटा निवेशक है या घरेलू निवेशक है, उन्हें यह रखना चाहिए कि वो पूरा इन्फॉर्मेशन स्टॉक्स के बारे में और उनके जो बिजनेसेस हैं उनके बारे में रखें, उनके क्या ग्रोथ पैरामीटर्स हैं और वो किस बेसिस पे अपना ग्रोथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके बारे में जानें. कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रिगर्स दिखते हैं जहां पे प्राइस राइज एकदम से होता है और बहुत लोग आपको कहेंगे या एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि आप उसे खरीद लें. आप बिना सोचे समझे ऐसे निवेश ना करें और ज्यादातर डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस चूज करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हो या फिर अपने ही डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री में करें या स्टॉक्स में करें. और ज्यादातर प्रकाशन जो होते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो या आपके टेलीविजन पे हो, उनको ध्यान से सुन करके समझ करके फिर निवेश करें. और कभी भी मार्केट जब गिरती है या एकदम से बढ़ती है उसको एकदम से रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि आपको ये जरूरी है समझना कि आपके जिस अमाउंट पे आपने पैसा लगाया है क्या उसमें नोशनल लॉस है या रियल लॉस है. अगर आपको रियल लॉस दिख रहा है और आपको मार्केट ऊपर बढ़ते हुए नहीं दिख रही, तो आप स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन होता है वो इस्तेमाल करें, पर पैनिक ना करें और लोन्स पे जाकर के पैसा ना लगा करके ये ना सोचें कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है या अभी ये मौका है और इस पे सबसे ज्यादा फायदा उठाएं.
यानी अपनी बचत का ही इस्तेमाल करें ज्यादा.
अपने बचत का वो पोर्शन जो आपको जरूरतों से ज्यादा लगता हो वो आप निवेश करें, जिनका आपको फायदा लॉन्ग टर्म में हो वो निवेश के लिए डालें.
गाजियाबाद से गौरव जुड़े हुए फोन लाइन पर. गौरव जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए.
गुड इवनिंग.
गुड इवनिंग जी.
मैडम, माय क्वेश्चन इज, सिंस अवर इन्फ्लेशन इज इन द रेंज ऑफ 6-7% एंड व्हाई डजंट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट और मेक इट लिमिट दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक नो इट्स ओन पीपल विल नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 7% सो दैट द मोर मनी इज अवेलेबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडियाज ग्रोथ, बिकॉज अवर एम इज गवर्नमेंट एम शुड बी टू इंक्रीज द India's prosperity in general, not increasing their own expenditure or salary. And second question in the same series is, if our GST is rising or taxes are rising, is it in the same proportion to the growth of the economy or not? Thank you.
So your first question is that the government should cap its expenditure. There is an FRBM Act which identifies that the fiscal deficit should not be beyond 3%. And most of the government expenditure comes from different activities that the government undertakes to manage the internal affairs and the overall regulation and supervision of the economy, which includes many aspects like police, courts, public sector undertakings, even let's say investments in strategic stakes like a media unit like DD or All India Radio and many others. And thereby the expenditures are then identified which are needed. Further, the investments in infrastructure in the last 10 years have been quite encouraging in terms of making roads, railways, ports, airports and many other investments that have gone. But it is necessary that the capacity is also utilized at the same time. There was a recent news which was talking about how these capacities may not be fully utilized or may are still less accessed by people. So it's necessary to identify where the infrastructure is being created and for what use will it be put in the next 5 to 10 years, given the benefits one receives from the infrastructure once it is built and the gestation periods for getting returns on the capital invested. Otherwise, the capital can get wasted. The GST rising, there are many reasons for that. One is that there has been a lot of consumerism in the market that has been there. Second, there have been a change in the demographic profiles of the income earners. From single earners, there have been double earners. There have been women participation in the income groups. Also, there has been factors where recently, a lot of cost and values have been on a rise. There has been a price rise as well, which does add on to the collections of the GST. Further, the GST, unlike many other taxes, is also implemented on a larger product base vis-a-vis the others. That has also changed. And then the incomes have also increased overall in the economy, which is also having a consumption effect. And last but most important factor is the credit availability that has been made on personal loans, consumer loans, or any other loans, even on investments that the private sector or even the government sector is doing.
So, you know, Dr. Yamini, taking forward from Gaurav's, you know, question, that means somewhere the GST is growing, the economy is also growing. Whether it's in proportion, we don't know, but the indicators are also. So, growth, the indicators of economic growth are, and GST is one of them, but whether it's directly, it's in proportion or the quantums, that we can't say.
That we cannot identify directly, but yes, the GST is rising and there is potential economic growth that is identified. So there is quite a relation between the two.
और अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 7 पैसे के उछाल के साथ अमरीकी डॉलर के मुकाबले 83.46 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.25% की गिरावट के साथ 105.53 पर था. और इस बीच एशिया के अधिकतर शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया. जापान के निक्केई सूचकांक में 0.54% की बढ़त दर्ज हुई और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 0.25% की तेजी के साथ बंद हुआ. वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.18% के नुकसान के साथ बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.71% की गिरावट देखी गई. हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ. यूरोप के तीनों प्रमुख बाजार आज हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं. समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैक 0.93% ऊपर था और जर्मनी का डेक्स 0.70% की बढ़त में चल रहा था. वहीं लंदन का फुटसी 100 0.44% के लाभ के साथ कारोबार कर रहा था. तो यामिनी जी, आज एशियाई बाजारों का मिला जुला रुख देखा गया. कुछ हिस्सों में गिरावट, खासतौर पे चाइना के मार्केट की अगर हम बात करें तो चाइना का मार्केट लगातार कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है.
जी देखिए, ओवरऑल मार्केट्स में, वर्ल्ड मार्केट्स में जो है एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है. विद रिस्पेक्ट टू कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस रहेंगी. इसमें खासतौर पे ये भी फर्क पड़ता है कि कहां कहां पे इन्फ्लेशन की फिगर्स स्टैंड करेंगी और उसका सीधा असर इकोनॉमी पे क्या रहेगा, खासतौर पे स्लो डाउन्स पे. जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं और जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और फर्दर जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और जो अलाइनमेंट्स हैं, ये सब डिटरमिन करेगा कि स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स या ओवरऑल ग्रोथ्स कैसे ट्रेंड करें.
और इस बीच मुंबई से हमारे श्रोता गोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं. गोपाल जी, आपका प्रश्न क्या है?
जी नमस्कार जी, भारतीनाथ जी को मेरे दो प्रश्न है. पहला प्रश्न ये है कि जो मार्केट में जो प्राइस जो आगे पीछे होती है, इसकी निगरानी कौन करता है? क्योंकि कई कंपनियों के प्राइस सडनली एकदम गिर जाते हैं, कुछ को पता भी नहीं पड़ता है देखते ही देखते. दूसरा सवाल ये है इन्फ्लेशन के बारे में. आरबीआई कहता है इन्फ्लेशन 4.5% के आसपास है. अगर फूड इन्फ्लेशन देखेंगे तो आप तो इसने तो कमर तोड़ दिए. ओनियन, पोटैटो, टोमेटो 100% फूड इन्फ्लेशन, दालें 100-150% फूड इन्फ्लेशन, ये तो कैसे ये कैलकुलेट करते हैं फूड इन्फ्लेशन, अपना ये इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आरबीआई?
जी देखिए, आपका पहला सवाल है कि मार्केट स्टॉक मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं वो कैसे होती रेगुलेट होती हैं. सेबी रेगुलेटर है और वो ऑब्जर्व करता है कि कोई मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ नहीं रही हो और बहुत ज्यादा फास्ट गिर नहीं रही हो. जहां भी एक्सेसिव मूवमेंट होती है या कोई सस्पिशियस मूवमेंट होती है, सर्किट फिल्टर्स या स्टॉप ट्रेडिंग हो जाती है. मार्केट प्राइसेस में ऐसे ही रेगुलेटर्स हैं बाकी कमोडिटीज के लिए भी. अकॉर्डिंगली अगर कहीं पे भी प्राइसेस ज्यादा बढ़ती हैं, वॉलेटाइल आती है या कोई पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं, उनके लिए रेगुलेटर्स को इन्फॉर्म किया जाता है एंड दे टेक करेक्टिव एक्शन. जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे कैलकुलेट होता है. सीपीआई का मतलब है रिटेल, जो हम जाकर के बाजार में खरीदते हैं जिस स्तर पे, और डब्ल्यूपीआई जो थोक बाजार का स्तर होता है जहां पे ज्यादा सामान बिकता है. दोनों की ही एक बास्केट होती है जिसके अंदर कमोडिटीज आइडेंटिफाई की जाती हैं जो स्टेपल रिक्वायरमेंट्स की होती है, मतलब जो आप आमतौर पर खाते हैं या देश के अंदर खाई जाती हैं या कंज्यूम की जाती है. उस बास्केट की प्राइसेस को लेकर के और उसमें चेंजेस जो होते हैं वो देखते हैं. जहां तक फूड इन्फ्लेशन की बात है, समर्स में यूजुअली अगर क्योंकि काफी हद तक हीट वेव रही है और उसकी वजह से ग्रीन वेजिटेबल्स और बाकी पल्सेस में इंक्रीज रहा है प्राइसेस का, जिसमें अगर आप देखें तो करेक्टिव एक्शंस आपको अखबारों में पढ़ने को मिलेगा जो सरकार ने उठाए हैं, जिसमें स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए स्टॉप किया गया है और कोशिश यही की गई है कि अगर एक्सपोर्ट्स हो तो वहां पे रोका जाए और पहले जो घरेलू रिक्वायरमेंट है उसे मीट आउट किया जाए.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए गेहूं तथा भंडारण की सीमा निर्धारित की है. नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए यह सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार गेहूं और दाल के मूल्यों के सामान्य बने रहने तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से भंडारण की जांच भी करेगी. और उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा कि अरहर की दाल और काबुली चना तथा भंडार पर सीमा निर्धारित करने के बाद इनके मूल्यों में कमी आई है. वैसे सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जो इस तरह की चीजें हैं उनके दाम लोग मनचाहे तरीके से न बढ़ा सकें, इसके लिए भंडारण की सीमा निर्धारित की गई. एक अच्छा कदम है.
जी बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि ये जरूरी है कि एसेंशियल कमोडिटीज है, खासतौर पे फूड, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पुअर लोगों का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होता है, उसके ऊपर उनके ऊपर ज्यादा जो है तकलीफें ना आए.
जी,
मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्टोरी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट फॉर द एनडीए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आर अ मीन्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ 140 करोड़ इंडियंस. In a social media post, Mr. Modi said that after the introduction of goods and services tax, GST, goods for household use have become much cheaper. He said this has resulted in significant savings for the poor and common man. Mr. Modi said that the government is committed to continuing this journey of reforms to transform people's lives.
अभी हमने जीएसटी की बात की और ये खबर भी हमने जो सुनी ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है. खासतौर पर अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम देखें तो रियलिटी सेक्टर में काफी कुछ नजर आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए.
जी आप ठीक कह रहे हैं, रियलिटी सेक्टर में काफी हद तक ग्रोथ नजर आई है, काफी सारी कैपेसिटी डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्योंकि इन्वेंट्रीज हैं, अभी लोग जो है मार्केट्स में वापस पहुंच रहे हैं और खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बेहतर सिग्नल है.
We move on to our third headline story. Crude oil prices firmed slightly today as traders wait support from expected summer demand and geopolitical tensions against a stronger dollar. Brent crude was up by 0.29% to $85.57 per barrel. The US West Texas Intermediate WTI crude was lower 0.38% to $81.04 per barrel when reports last came in. So, Dr. Yamini, you know, crude oil, and we've always been looking at, is there a summer demand here? Is in countries like India, a winter demand in the December months for countries like the U.S.? How do you see, and geopolitical tensions have now kind of been here to stay. It's become prolonged over a period of time. How do you see crude oil panning out in the next couple of months?
Well, overall, there is demand for crude oil, which is on a continuous rise. But it will depend upon how the macroeconomic indicators unfurl themselves overall in the markets, whether it is in US, it is in Eurozone, in China, and even in India. It will also depend upon how the political inclinations with the elections that are there, either in the Eurozone or in UK, will indicate the political inclinations and affect the overall geopolitical scenario and further steps that are being taken by the political leaders overall at the world level. Further, when we talk about crude oil, the US dollar has been gaining strength. So that reduces the demand for oil because it becomes more expensive. And also because there has been recessionary state of affairs, that also pulls down the demand. But there are certain economies that have been doing fairly well, and India included to that. So there is demand from India and some other markets. So that will help pull up the demand. But overall, because of the recessionary state of affairs, slowdowns, as well as high inflations, greater strength in the US dollar, they will have a negative impact on the oil.
और आगे बढ़ते हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वायदा कारोबार के लिए सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. इस बीच दिल्ली से साकेत हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर. साकेत जी, जल्दी से आपका प्रश्न पूछिए.
सर, मेरा सवाल ये है कि मैं एक नया स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करने जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए?
जी अमनी जी,
जी देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट को स्टडी करें, और इसके लिए जरूरी है कि आप एक अपना जो है पोर्टफोलियो बनाएं, जिसके अंदर आप सीधा निवेश ना करके उस पोर्टफोलियो को एक दो महीने तीन महीने स्टडी करें और फिर निवेश करें. ज्यादा से ज्यादा प्रकाशन पढ़ें, कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करें, या अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश करें, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको समझने की कोशिश करें. स्लोली आप पहले SIPs के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कम अमाउंट्स पे आप स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं. सीधा ही बड़ा एक्सपोजर ना लेकर के छोटे एक्सपोजर्स में और डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर्स में लेकर के फिर एंटर करें.
और श्रोता, आपको बता दें कि सोने का वायदा मूल्य अगस्त 2024 के लिए 0.13% की तेजी के साथ 71,680 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. वहीं जुलाई 2024 अनुबंध के लिए चांदी 0.11% के उछाल के साथ 89,238 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान सोना 0.37% ऊपर चढ़कर $2,339.90 प्रति औंस के स्तर पर था, और अंतिम जानकारी प्राप्त होने तक चांदी 0.19% की बढ़त के साथ $30 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी. यामिनी जी, स्टूडियो में आने के लिए, कार्यक्रम में हमसे जुड़ने, श्रोताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी धन्यवाद.
Absolutely. Thank you so much for joining us in the studio today, Dr. Yamini. And now, listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark indices end higher amid volatility. Nifty climbs 0.16% while Sensex goes up 131 points. Centre imposes wheat stock limits to ensure food security. And crude oil prices surge amid summer demand expectations. And that's it in today's program. Namaskar.
Namaskar.
Market Matra.